आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का छठा पाठ पढ़ेंगे, भगवान के डाकिये। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। इनका जन्म बिहार में हुआ था, ये बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर एक छायावादी कवि थे। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके अलावा भी कुछ छायावाद के कवि हुए हैं, जिनमें हरिवंश राय बच्चन, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर इनका नाम प्रमुख है। दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, द्वंद गीत, बापू, धूप छा, मिर्च का मजा और सूरज का विवाह। इस कविता में कवि ने प्रकृति के महत्वपूर्ण अंगों, पक्षी, बादल, इनको डाकिये के रूप में प्रस्तुत किया है और इनका महत्व बताया है। कवि ने इस कविता में बताया है कि ये प्रकृति के जो डाकिये हैं, ये मानव द्वारा बनाई गई जो सीमाओं का बंधन है उसको नहीं मानते हैं और सीमा को तोड़कर एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं और इनकी चिट्ठियों को वहां पहुंचाते हैं और वहां की चिट्ठियों को ये यहाँ वापस लेकर आते हैं और उन चिट्ठियों को यहाँ के पेड़ पौधे पढ़ते हैं और एक दूसरे स्थान का जो हाल है उसको जानते हैं। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चलिए अब इस कविता का मतलब समझते हैं। पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिये हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जो डाकिये होते हैं वो मनुष्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार को लाने ले जाने का काम करते हैं। डाक जो होती है, पत्र जो है उसे इधर से उधर ले जाना, यहाँ की जो सूचना है उसे वहां पहुंचाना, वहां के समाचार को यहाँ पहुंचाना, ये काम कौन करता है? मनुष्य के लिए डाकिया करता है। इसी प्रकार ये पक्षी और जो बादल हैं, ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये भगवान के भेजे हुए डाकिये हैं जो भगवान का संदेश नीचे लेकर आते हैं। और भगवान के डाकियों के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे, नहीं, वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी महादेश को उड़ जाते हैं, वहां का संदेशा लेकर जाते हैं और वहां से संदेशा लेकर आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि कहता है कि उनकी लाई चिट्ठियों को हम तो नहीं पढ़ पाते ना हम समझ पाते हैं, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? ये पेड़ पौधे पानी पहाड़, ये जो प्रकृति है, ये उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ती है। मतलब ये पक्षी और बादल जो है, ये प्रकृति के डाकिये हैं, ये प्रकृति का संदेशा लेकर आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके सुख दुख का समाचार लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। और हम मनुष्य जो है वो भगवान के डाकियों द्वारा लाया गया जो संदेश है उसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब कुछ समझ लेती है और इन संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करती है। वो जो प्रकृति है, वो भगवान के द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं इन डाकियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, बादलों के द्वारा, इनको प्रकृति समझती है और उसी के अनुसार कार्य करती है, व्यवहार करती है। इन डाकियों की कोई सीमा नहीं है, ये कहीं से किसी भी देश से किसी भी देश को उड़ जाते हैं और यहाँ का संदेशा पहुँचाते हैं, किसी भी महादेश से दूसरे महादेश, किसी भी महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाते हैं और सुख दुख का समाचार जो है वो लेकर आते हैं और अपना जो संदेश है वो प्रकृति को सुनाते हैं। प्रकृति उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ती है और उन्हें समझती है और उनके अनुसार कार्य भी करती है, व्यवहार भी करती है। जहाँ मनुष्य ये भगवान के भेजे हुए डाकियों, जो भगवान के डाकिये हैं, उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ने में असमर्थ है, उन्हें समझने में असमर्थ है, जो मनुष्य है वो उनकी चिट्ठियों को नहीं पढ़ सकता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कभी कहते हैं कि मनुष्य तो प्रकृति के इन संदेशों को समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये जो है ये इन संदेशों को अच्छी तरह समझते हैं। हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम केवल ये सोचते हैं कि एक देश की धरती ने दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजी है, अपनी वहां का हाल भेजा है कि इस देश की धरती ऐसी है, इस देश की धरती की सुगंध ऐसी है और वहां की धरती की सुगंध ऐसी है। हम ये सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं, मनुष्य इस बात का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्रकृति है वो एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश की धरती को अपनी सुगंध भेजती है, अपना संदेश भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। वास्तव में धरती ऐसा कार्य करके इस बात का संदेश देती है कि हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक देश की धरती द्वारा भेजी गई सुगंध हवा में तैरती हुई, पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई, देश की सभी सीमाओं के बंधनों को तोड़ देती है और पड़ोसी देश के वातावरण में घुल मिल जाती है। प्रकृति द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव ना किए जाने का दूसरा उदाहरण इस बात से मिलता है कि एक देश की नदी, सागर, झील आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और ठंडा होने पर वर्षा के रूप में बरसने लगता है और ये संदेश देता है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक देश की सुगंध जो है वो दूसरे देश की सुगंध में मिल जाती है वो कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे एक देश का पानी एक स्थान से भाप बनकर उड़ता है लेकिन दूसरी जगह पर ठंडा होने के बाद बारिश बनकर गिरता है, तो वो कोई भेदभाव नहीं करता कि मैं तो यहाँ के पानी से भाप बन के उड़ा था तो मैं तो यही बारिश बन के बरसूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रकृति है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो मनुष्य को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये समानता का उदाहरण है कि आपको किस प्रकार दूसरे लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ एक जैसे रहना चाहिए, घुल मिल के रहना चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। तो इस कविता में दिनकर जी ने यही बताया है कि जो पक्षी और बादल होते हैं वो भगवान के डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को संदेश ले जाते हैं, जिन्हें हम नहीं समझ सकते हैं लेकिन इनकी लाई हुई चिट्ठियों को ये प्रकृति पढ़ती है, ये पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसके अनुसार व्यवहार भी करते हैं। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं, ये अंदेशा लगा पाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है और वो सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई सभी देशों की सीमाओं को, बंधनों को तोड़ देती है और सभी देश के वातावरण में घुल मिल जाती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और एक देश का पानी जो है भाप बनकर उड़ता है और वही जो पानी है जो भाप बन के उड़ा है दूसरे देश में वर्षा के रूप में बारिश बनकर गिरता है। तो यहाँ ये समानता का भाव आपको अपनाना है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। समानता का संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है और ये भी दिया है कि ये जो पक्षी होते हैं, बादल होते हैं, ये भगवान के डाकिये हैं जो प्रकृति का संदेशा एक देश से दूसरे देश की ओर ले जाते हैं। इनके लिए कोई सीमा बंधन नहीं है, ये सभी सीमाओं को बंधनों को तोड़कर एक देश से दूसरे महादेश की ओर उड़ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न कविता से, पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया है, इसके कुछ निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पक्षी और बादल मनुष्य की बनाई हुई देश और धरती की सीमा को पार करके दूसरे स्थानों में न केवल जाते हैं बल्कि उनके लिए सद्भावना का संदेश लेकर जाते हैं। मनुष्य प्रकृति के डाकिए पक्षी बादल इनका संदेश नहीं समझ पाता है, जबकि जो प्रकृति है वो उनके संदेशों को बहुत जल्दी समझ जाती है और उनके अनुसार कार्य भी करती है। पक्षी और बादल प्रेम, सहयोग, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान का डाकिया कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? मनुष्य इन चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाता, वो इन चिट्ठियों को नहीं समझ पाता है, लेकिन पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग जो हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ पाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पानी, नदी, सागर, झरने, पहाड़, ये जो प्रकृति के जो अंग हैं वो उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ने में समर्थ होते हैं, उनकी चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं और पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं? किस पंक्ति का अर्थ ये है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे को भेजते हैं, किस पंक्ति का ये भाव है?
जो पहला पैराग्राफ है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। इसी का अर्थ है कि पक्षी और बादल जो है वो प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, ये किन पंक्तियों का अर्थ है? और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इन लाइनों का भाव है कि प्रकृति जो है वो किसी देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से जो भाव बन के बादल उठता है वही बादल दूसरे देश में जाकर बारिश के रूप में बरस जाता है। चौथा प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ प्रेम, त्याग, सहयोग, सद्भावना, आपसी मेलजोल, एकता आदि का संदेश पढ़ पाते हैं, दूसरे देश की हालत को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, उस देश की मिट्टी की सुगंध जो है वो उसको महसूस कर पाते हैं। पांचवा प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका अर्थ ये है कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य एक समान है, वो सभी मनुष्यों को एक दृष्टि से देखती है, वो प्रेम, त्याग, सहयोग, सद्भावना, आपसी मेलजोल, एकता जैसे संदेश बिना किसी भेदभाव के दूसरे देशों को भी भेजती है, जिससे आपसी प्यार और सहयोग बढ़ता रहे, लोग एक दूसरे की मदद करते रहे, सभी के बीच एकता का भाव जो है वो बढ़े। तो एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है और वो जो सुगंध है वो उनके वातावरण में भी मिल जाती है, वहां के हवा में तैरती हुई, पक्षी के पंखों पर तैरती हुई, वहां के वातावरण को वो अपना बना लेती है, मिल जाती है। पाठ से आगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव के संदेश के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इनमें ईश्वर का प्रेम, एकता, आपसी प्यार का संदेश छिपा रहता है, जो बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया के मनुष्यों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए पंक्तियां लिखिए। आजकल चिट्ठियों का चलन थोड़ा कम हो गया है, इसकी जगह पे इंटरनेट का बहुत उपयोग किया जाता है, आजकल सभी ऑनलाइन सूचना भेजते हैं, जो भी जानकारी या समाचार भेजना होता है वो घर बैठे ही मिल जाती है, भेज सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करनी है। प्राचीन काल में चिट्ठियों को भेजना आसान काम नहीं था। इन चिट्ठियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की संभावना भी पूरी नहीं होती थी, मतलब पूरी पूरी संभावना नहीं होती थी कि ये पहुंच ही जाएंगे, हालांकि ज्यादातर समाचार पहुंच जाते थे। कई पशुओं और पक्षियों द्वारा किया जाता था जिनकी एक निश्चित क्षमता होती थी। आपने सुना होगा पहले, बहुत पहले क्या था, कबूतर के द्वारा भी संदेश भेजे जाते थे, तो कई बार भेजा गया संदेश जो है वो गलत हाथों में भी पड़ जाता था, मतलब जिसके पास वो संदेश पहुंचना है उसके बजाय संदेश किसी और के पास भी पहुंच जाता था, या फिर कई बार ये होता था कि संदेश खो भी जाता था, और कई बार ऐसा होता था कि जो संदेश है वो आर्थिक रूप से महंगा भी होता था। संदेश भेजना ये ऐसा कार्य है जो कई लोगों के लिए महंगा साबित होता था। अब यही काम, इसी काम को इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी संदेश को किसी भी व्यक्ति, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में बैठा हो, एक मिनट से भी कम समय में भेजा जा सकता है। अब ये किसी और इंसान के हाथ में पड़े, गलत इंसान के हाथ में पड़े, इसकी संभावना भी कम रहती है अगर आप सतर्क हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी संभावना नहीं है, 0% तो नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत एड्रेस उसमें भी डालेंगे, मतलब अगर आपने गलत नंबर डाला है, गलत ईमेल डाला है, तो मे बी वो किसी और के पास चला जाए, बट इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ज्यादातर लोग सही करते हैं तो वो किसी और के हाथ में पड़ने की संभावना जो है वो कम रहती है। और यदि संदेश पढ़ने वाला व्यक्ति चाहे तो संदेश का उत्तर भी अगले एक मिनट में दे सकता है, जबकि चिट्ठी में ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि चिट्ठी पहुंचने में बहुत टाइम लगता था और उसका संदेश वापस आने में भी बहुत टाइम लग जाता था। इस प्रकार एक संदेश मुश्किल से 2-3 मिनट में आ और जा सकता है, आजकल तो इससे भी बहुत कम टाइम लगता है। तीसरा, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है, ये आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में भी, आपने पढ़ा था पत्र के बारे में कि पत्र कितने महत्वपूर्ण है, और पत्र ले जाने लाने ले जाने के लिए कौन चाहिए, डाकिया। तो डाकिये की क्या भूमिका है उस पर आपको कम से कम 10 लाइनें लिखनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे। अनुमान और कल्पना। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब www तथा पक्षी और बादल, इन 3 संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। आपने पिछले चैप्टर में भी पत्रों के बारे में पढ़ा था, चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया पाठ है चैप्टर 5, उसमें भी आपने चिट्ठियों के बारे में पढ़ा था, इसमें भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपने अलग अलग तरीके के संवाद वाहकों के बारे में पढ़ा है, जैसे डाकिया जो चिट्ठियां लाता ले जाता है, इंटरनेट जिसपे आप कुछ सेकंड्स में ही अपने मैसेज को दूसरे इंसान के पास भेज सकते हैं, और तीसरा जो इस कविता में बताया गया है कि पक्षी और बादल जो है वो भगवान के डाकिये हैं। इन तीनों की आपस में तुलना करनी है, इनके बारे में आपको कल्पना करनी है कि आप इन तीनों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, ये क्या है, हमारे जीवन में ये कितना महत्व रखते हैं, इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है। ये आप लेख लिखेंगे और इसके लिए आप जो पिछला चैप्टर था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया उसकी सहायता भी ले सकते हैं। शब्द अर्थ, कठिन शब्द जो है इस कविता में, वाचना, वाचना का मतलब है पढ़ना, सस्वर पढ़ना मतलब बोल बोल के पढ़ना, आंकना अनुमान लगाना, पाख मतलब पंख या पर किसी पक्षी के पंख, सौरभ सुगंध खुशबू, ठीक है। भगवान की डाकियों के बारे में तो आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी एक छोटी सी कविता आपकी बुक में है, ये भी चिट्ठियों के ऊपर है, इसका नाम भी चिट्ठियां है, ये पेज नंबर 30 पे है, मतलब जिस पेज पे भगवान के डाकिये पोयम है उसी के लेफ्ट हैंड पेज पे ये पोयम है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इस कविता से कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, आपके पढ़ने के लिए है, तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं। इसको लिखने वाले हैं कवि है रामदरस मिश्र। ये कहते हैं, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती है। कैसा है यह एक साथ होना,
दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? इसमें लेखक कहते हैं कि लेटर बॉक्स में चिट्ठियां पड़ी हुई हैं, बहुत सारी अनंत चिट्ठियां हैं जिनमें अनंत सुख दुख की कहानियां हैं। उन लाखों करोड़ों चिट्ठियों में लाखों करोड़ों सुख दुख की कहानी होती है, लेकिन वो चिट्ठियां एक ही लेटर बॉक्स के अंदर होती हैं, एक साथ होती हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी से बोलता नहीं है। सब अकेले अकेले होती हैं, अपने में ही बस होती हैं और अपने मंजिल पे पहुंचने का इंतजार कर रही होती हैं। मतलब ये चिट्ठियां, सब लाखों चिट्ठियां एक लेटर बॉक्स के अंदर पड़ी हैं, उनके अंदर लाखों कहानियां हैं, किसी की सुख का संदेश है, किसी के लिए खुशी की बात उस चिट्ठी के अंदर लिखी है, किसी के लिए बहुत दुखद समाचार उस चिट्ठी के अंदर होता है, लेकिन ये चिट्ठियां आपस में कोई बात नहीं करती हैं, बस सब अकेले अकेले अपनी मंजिल पे पहुंचने का इंतजार करती रहती हैं। कवि कहते हैं कि ये साथ होना कैसा है, ये कैसा साथ होना है कि हम एक साथ भी हैं पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को जान नहीं सकते, दूसरे के साथ ना हंसना ना रोना। मतलब एक चिट्ठी के अंदर हंसने वाली बात है, खुशी की बात है, एक के अंदर रोने वाली बात है, लेकिन वो आपस में बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ हंस नहीं सकते, बात नहीं करते। और उसके बाद कवि ने कहा है कि क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं। ये लेटर बॉक्स के माध्यम से कवि इंसानों को ये बताना चाहता है कि क्या हम भी उस लेटर बॉक्स के अंदर पड़े हुए चिट्ठियों की तरह ही हो गए हैं। हम बस जिए जा रहे हैं, अपने कामों में लगे हैं और इतने व्यस्त हो गए हैं अपने कामों में कि हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है। हम रहते तो साथ में हैं पर हम उससे कोई बात नहीं करते या हमारी उससे कोई जान पहचान नहीं है। बस साथ में रहते हैं, जिए चले जा रहे हैं, अपना जो काम है उसे करते जा रहे हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आजकल गाँव में और शहरों में बड़ा फर्क होता है। गाँव के लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत करीब से, बहुत नजदीक से, बहुत अच्छे से। उन लोगों के जो संबंध हैं आपस में बहुत अच्छे होते हैं और वो एक दूसरे को सभी जानते हैं, पहचानते हैं। गांव में एक इंसान को उसके गांव में रहने वाले सभी लोगों का पता होता है, सभी लोगों के नाम और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, मतलब घर में नहीं तो एटलीस्ट उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर किसी के घर में कोई खुशी की बात है, शादी है, तो पूरे गाँव में पता होता है। अगर कोई दुख की बात है तो भी सबको पता होता है। वो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे अलग अलग कटे कटे नहीं रहते। जबकि इसी चीज को अगर आप शहरी जीवन में देखेंगे तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। शहरों में लोग बस अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। एक इंसान को ये भी नहीं पता होता कि उसके बगल वाले घर में कौन रहता है। शहरों में बहुत सारे फ्लैट भी होते हैं, फ्लैट में भी एक इंसान को ये नहीं पता होता कि उसके नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है या फिर उसके ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है। तो कभी यही कहना चाहता है कि हम भी आज अपने जीवन की दिनचर्या में इतने बिजी हो गए हैं, इतने व्यस्त हैं अपने दिन के कामों में कि हमें फुर्सत नहीं है कि हम किसी से बात कर सकें, अपने बगल वाले को भी जान सकें। यहाँ तक कि हमारे अपने पड़ोसियों को भी हम अच्छी तरह नहीं जानते, उनके बारे में नहीं जानते। शहरों में तो बल्कि यहाँ तक है कि वो अपने पड़ोसी बिल्कुल बगल में रहने वाले का भी नाम नहीं जानते होते हैं। आज का टाइम बहुत बिजी हो गया है, लोगों के पास समय नहीं है कि वो एक दूसरे से बात करें, उनसे जान पहचान करें या फिर उनके सुख या दुख में शामिल हो सके, उनकी खुशियों में शामिल हो, उनकी खुशियों को अपनी खुशी समझे या उनके दुखों में शामिल हो और उनके दुख को कम करने की कोशिश कर सके। लोगों में दूरियां आ गई हैं और शहरों में ये बहुत ज्यादा है। तो कवि इस कविता के माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस लेटर बॉक्स में, इस संसार में बहुत सारी चिट्ठियां, मतलब बहुत सारे इंसान हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम बस अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करें, बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, उनके दुखों में शामिल होना चाहिए, उनके साथ हंसना रोना चाहिए और इस तरह अलग अलग नहीं रहना चाहिए। सभी के साथ मेलजोल होना चाहिए, उनके साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए। तो आप भी सबके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, आपकी क्लास में आपके बहुत दोस्त होंगे, 1, 2, 4, 10, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं दोस्तों तक सीमित नहीं रहना है, आपको क्लास के जो और बच्चे हैं उनसे भी बात करनी है, उनके साथ भी दोस्ती रखनी है। ठीक है, आपके बहुत अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, वो 1-2 हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर बाकी बच्चों से भी आपको बात करनी है, उनसे भी दोस्ती रखनी है, उनके बारे में भी जानिए, उनके साथ भी खुशी दुख इनको बांटने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करके देखिए, क्या पता वो आपके और अच्छे मित्र बन सके। आपको बिना बात करे कैसे पता चलेगा कि वो आपका एक अच्छा मित्र बन सकता है? तो आपको जरूर अपने जो क्लासमेट्स हैं, या जो क्लासमेट्स हैं या स्कूलमेट्स से भी बात करनी है, जो स्कूल में और अदर क्लासेस के बच्चे हैं उनसे भी बात करिए और दोस्ती रखिए, अपने आसपास के लोगों को जानने की कोशिश कीजिए और आसपास की चीजों को भी जानने की कोशिश करिए, अपने वातावरण को भी समझिए, अपनी प्रकृति का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रकृति का ध्यान रखते हैं तो प्रकृति भी आपका ध्यान रखती है। आप मुझे बताइए, आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है, या किसी ने कभी आपको कोई चिट्ठी लिखी है, कभी आपको कोई चिट्ठी मिली हो, लिखी है कभी आपने किसी को चिट्ठी या किसी ने आपको? नहीं लिखी है तो एक काम करिए, आप एक चिट्ठी जरूर लिखिए। किसको लिखनी है? कोई भी जो आपसे दूर रहते हो, जो आपको बहुत पसंद है, कोई भी, अगर आप अपने घर वालों से दूर रहते हैं, मम्मी पापा से, तो उनके लिए लिखिए, या फिर आपके कोई भी भाई बहन जो आपसे दूर रहते हैं घर से बाहर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, उनको एक पत्र लिखिए, किसी को भी लिखिए, आपके किसी भी रिश्तेदार को, आपके मामा जी हैं, नाना जी हैं, दादी हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, उनको एक पत्र जरूर लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको एक पत्र लिखना है, चाहे किसी को भी लिखिए, जिसको आपको मन करे, और एक पत्र जरूर लिखना चाहिए, कम से कम एक बार तो एक्सपीरियंस लीजिए कि पत्र कैसे लिखा जाता है, और इसको लिखने के बाद आपको खुशी मिलेगी, और आपसे ज्यादा खुशी उन्हें मिलेगी जिनको आप ये पत्र लिखेंगे। जब उन्हें आपकी तरफ से ये पत्र मिलेगा तो यकीन मानिए उन्हें बहुत खुशी होगी, और वो अपनी ये खुशी आपको जरूर बताएंगे, और जब वो आपको बताएंगे कि ये पत्र देखने के बाद उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई है, तो उससे आपको भी बहुत खुशी होगी। तो इस खुशी के लिए आप एक पत्र जरूर लिखेंगे, कल ही जाकर आप एक पत्र पोस्ट ऑफिस में डाल कर आएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जरूर करना है आपको। हमारी चिट्ठियों का जो सफर है वो खत्म हो गया है, आज की ऑडियो में इतना ही, नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।